नियमसार कारण कार्य नियम लेक्चर नंबर 375 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः
सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आययाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् नम्यूनजिनम् वीरम् अनन्तवर्णानदंशनसहावम् वोक्षामि नियमसारम्
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियमसार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभा मलधारी देव ने तात्पर्य वृत्ति टीका लिखी हुई है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए वो कारण कार्य नियम पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से अभी छठी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 89 गुजराती में क्या 89 गुजराती में 89 हिंदी में 89 पृष्ठ पर हम आए हैं। नीचे का पैराग्राफ यहाँ से हम पढ़ेंगे। उन्होंने एक उद्धरण रूप से श्लोक दिया था, उसके श्लोकार्थ का प्रवचन चल रहा है। उसमें ये बात बताई थी कि आत्म कार्य को छोड़कर, यानी आत्म कार्य ने छोड़ी ने दृष्ट तथा अदृष्ट थी विरुद्ध है भी ते चिंता थी, यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष विकल्पों से ब्रह्मनिष्ठ यतियों ने सुप्रयोजन छे एम। अभी नीचे का पैराग्राफ, एवी ते चिंता थी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष थी विरुद्ध एवा विकल्पो थी ब्रह्मनिष्ठ यतियों ने शु प्रयोजन छे, यानी काय प्रयोजन नथी। पोतानी चीज आत्मा आनंद स्वरूप बिराजे छे, अतीन्द्रिय आनंद नो भंडार छे, अंतरमा आत्मा वीतराग मूर्ति छे, वीतराग स्वरूप छे, एवा वीतराग स्वरूप मा लीन थनारा ब्रह्मनिष्ठ एने बीजानु शू काम, एने बीजाथी शू काम, बीजानु शू काम ने बीजाथी शू काम, के हूँ उपदेश आपू तो दुनिया समझे अने आने ते एनु तारे शू काम छे। उपदेश वाणी जड़ छे अने समझते तो इन्हें पर्याय थी समझते, मैं उसको समझा दूं, देखो समझाने का विकल्प आना वो बात अलग है, पर मान्यता तो वैसी है नहीं। पेज नंबर 89 नीचे का पैराग्राफ,
लास्ट टू थ्री लाइंस।
तो कहते के उपदेश वाणी जड़ छे अने जो समझने वाले हैं वो तो उनकी अपनी पर्याय की योग्यता से अपने पर्याय से समझेंगे, तारी भाषा थी नहीं समझे। निमित्त होता है पर निमित्त से परद्रव्य में कुछ भी नहीं होता कार्य, भारे काम छे। ब्रह्मनिष्ठ यतियों ने शू प्रयोजन छे, हा हा हा। अब पेज नंबर 90 बढ़िया 145वीं गाथा ने टीका पूर्ण करता टीकाकार मुनिराज श्लोक कहे छे। पहला श्लोक उन्होंने उद्धरण दिया था, अब ये उनका अपना श्लोक। तथा ही देख लेते जरा 246 हाँ। यावत् चिंतास्ति जंतूनाम, यावत् चिंतास्ति जंतूनाम तावत् भवति संस्रुति यथेन्धन यथेन्धन सनाथस्य स्वाहानाथस्य वर्धनम्, स्वाहानाथस्य वर्धनम्। यथेन्द्र बराबर है,
अनुस्वार है,
हाँ अनुस्वार है, वो बिंदी है, जब तक ईंधन है उसका तब तक अग्नि की वृद्धि होती रहती है। देखो हम पहले श्लोक पढ़ेंगे, यावत् चिंता सृजन्तूनां तावत् भवति संस्रुति यथेन्द्रन सहनाथस्य स्वाहानाथस्य वर्धनम्। जेम उसका अर्थ, ईंधन युक्त अग्नि वृद्धि पामे छे, यथा ईंधन सनाथस्य स्वाहानाथस्य वर्धनम्। स्वाहानाथ कहा उसको, अग्नि को, जेम ईंधन युक्त अग्नि वृद्धि पामे छे, अर्थात जहां सुधी ईंधन छे त्यां सुधी अग्नि ने वृद्धि थाय छे, तेम जहां सुधी जीवों ने चिंता एटले विकल्प छे त्यां सुधी संसार छे। यावत चिंता अस्ति जंतुनाम तावत भवति संस्कृति। अब नीचे उसका श्लोकार्थ का प्रवचन देखते हम। जेम ईंधन युक्त अग्नि वृद्धि पामे छे, ईंधन अग्नि मा ईंधन नाखवाती ईंधन हुआ, ईंधन न चाहिए, नल वाला न चाहिए, वो बाण वाला नहीं नहीं चाहिए। अग्नि मा ईंधन नाखवाती अग्नि प्रज्वलित थाय छे, अग्नि वृद्धि पामे छे। अग्नि मा ईंधन नाखवाती अग्नि वृद्धि पामे छे, अर्थात ज्यां सुधी ईंधन छे त्यां सुधी अग्नि नी वृद्धि थाय छे, तेम ज्यां सुधी जीवो ने चिंता एटले विकल्पो छे त्यां सुधी संसार छे। पोतानी चिंता के पोताना भाव सिवाय कोई पण विकल्प आवे ए संसार छे। संसार आत्मा थी भिन्न नथी रहतो। क्या कहा, लोगों को लगता है ये हमारा सारा संसार है, बाहर में जो हमने खड़ा कर दिया ना, वो तो आत्मा की पर्याय। स्त्री कुटुंब पैसो लक्ष्मी मकान संसार नथी, ए तो परचीज छे। परमात्मा संसार तो इन्हें कहे कि तारी चीज थी विरुद्ध तारी दृष्टि। क्या कहा, परमात्मा ने संसार किसको कहा, तारी चीज थी विरुद्ध तारी दृष्टि अने राग द्वेष, तारी पर्याय मा रहे छे संसार छे, अने मोह राग द्वेष यही संसार है। स्त्री कुटुंब परिवार ए तो परचीज छे संसार नथी, ए तारो अवगुण छे तारी पर्याय मा छे। तारो अवगुण संसार कहीं बाहर मा नथी, और दूसरी बात स्वभाव में भी नहीं है, पर्याय में खड़ा कर दिया है। अहीं तो त्यां सुधी कहूं के अग्नि मां जहां सुधी लाकड़ा पड़ा हो त्यां सुधी अग्नि वृद्धि पामे छे, तेम जहां सुधी जीव ने परणु लक्ष्य रहेशे, जहां सुधी अग्नि मां ईंधन छे त्यां सुधी अग्नि प्रकर्षे, एम जहां सुधी आत्मा मां परद्रव्य तरफ नो विकल्प रहेशे। विकल्प की बात है ना, त्यां सुधी संसार छे। परद्रव्य तरफ नो राग चाहे तो पंच परमेष्ठी हो, त्रण लोकना नाथ उपर लक्ष्य जशे तो राग उत्पन्न थशे, अने राग ए संसार छे। स्त्री कुटुंब ए तो परद्रव्य छे, ए तो तारी पासे छे ज नहीं। क्यों छे ज नहीं, अरे है ना हमारे पास, ए तो परद्रव्य, उसके अपने चतुष्टय में है वो। स्त्री कुटुंब पैसो लक्ष्मी मकान ए तो परमा छे, तारी पासे तो पोताना चैतन्य ने भूली ने परद्रव्य मा तारू लक्ष्य जाय छे, अने परद्रव्यना लक्ष्य मा आ मारू छे मारू छे एवी कल्पना उठे छे, आ संसार छे। त्यां सुधी संसार छे, ज्यां सुधी अग्नि मा लाकड़ी पड़ी छे त्यां सुधी अग्नि प्रज्वलित छे, एम आत्मा मा चैतन्य चैतन्य अग्नि ज्यां सुधी राग आवे छे त्यां सुधी राग सळगे छे। राग सळगशे, चैतन्य प्रभु नहीं सळगे। क्या कहा, वो तो कायम एक रूप अनादि अनंत तो कायम रहता है। पर्याय द्रव्य से भिन्न रहती है क्या, तो संसार क्या है? आत्मा की मोह राग द्वेष रूप पर्याय। वो आत्मा से जुदी रहेगी क्या? द्रव्य से जुदी है वो? कौन सी अपेक्षा से? अपन यहां ध्रुव की बात नहीं कह रहे, क्या कहा? संसार आत्मा थी भिन्न नहीं रहतो, यानी वो तो हम उसको लक्ष्य करने के लिए उसको ध्रुव का लक्ष्य अलग देते हैं, पर द्रव्य गुण पर्यायमात्मक जो द्रव्य है तो उसमें पर्याय जुदी है क्या? उसको गौण करके हम ध्रुव का लक्ष्य कर रहे, पर पर्याय है ना वहां पर? अगर पर्याय सर्वथा नहीं होगी तो फिर वो दुखी होने का सवाल कहाँ है? और फिर ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष की चर्चा क्यों कर रहे हैं? दुख है कि नहीं पर्याय में? अज्ञान है कि नहीं है? मोहराग द्वेष है कि नहीं? उसी की बात है। वो जो है मोहराग द्वेष वही संसार है। ख्याल में आई बात? परंतु फिर भी पर्याय में संसार होने पर भी जो त्रिकाली स्वभाव है वो कायम है, पर अनुभव किसका हो रहा है? पर्याय का।
आपका क्या प्रश्न है फिर से बोलना? ऐसा है कि संसार ये पर्याय है और कभी भी द्रव्य अपने पर्याय से रहित नहीं होती। ये जो संसार है वो विभाव रूप परिणमन है और मोक्ष है वो स्वभाव रूप परिणमन है, तो मोक्ष भी पर्याय है, वो आत्मा से जुदी नहीं है। वैसे संसार भी आत्मा से जुदा नहीं है।
हम कहते ना ये संसारी जीव और ये मुक्त जीव, क्यों कहा संसारी? वो पर्याय को लेके कहा कि नहीं? तो पर्याय से भिन्न तो है ही नहीं वो। ये द्रव्य गुण पर्याय के भेद तो हम समझने के लिए करते हैं। वस्तु तो एक है, वस्तु तो एक है, अखंड
नहीं
है।
उनको ऐसा लगा कि संसार आत्मा से भिन्न नहीं, तो फिर वो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, संसार तो रहेगा ही, ऐसा उनका
नहीं। भिन्न नहीं रहते हैं, वो आत्मा की ही वो पर्याय है, वो आत्मा से जुदी नहीं है। हम क्या समझते हैं? ये हमारा धन, देखो ये धन, ये बच्चे है, पैसा है, उसको संसार माना है, तो क्या वो तो आत्मा से जुदी चीज है? ऐसा संसार आत्मा से जुदी है क्या? इस अपेक्षा से कहा। देखो वो बात अलग है, वो पर्याय को गौण करके हम ध्रुव का अनुभव करना चाहते, उसका लक्ष्य करना चाहते, उसमें एकाग्र होना चाहते, जो शुद्धने का विषय है, नये का विषय है। परंतु वस्तु कैसी है? वस्तु प्रमाण रूप होती है, उसमें द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, पूरा सत कैसा है, तीनों का मिलकर उसको कहेंगे। तो वहां पर्याय से जुदा नहीं है, वो पर्याय है वहां पर। देखो जो अपेक्षावश कहा है उसको सर्वथा अगर भिन्न मानेंगे हम, तो फिर तो मिथ्या मान्यता हो जाएगी। वितरागी काहे का? अरे वो पर्याय माने ही नहीं, पर्याय है नहीं, है नहीं, है नहीं, पर्याय की बात ही मत करो। अरे पर्याय है ना वहां पर? हाँ, आप उसको गौण करके जहाँ लक्ष्य करना है उस समय आप गौण करो, पर ज्ञान में वो तो दृष्टि अपेक्षा गौणता, ज्ञान की अपेक्षा तो उसका स्वीकार होना ही चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो सबको जानेगा, ज्ञान तो पर को भी जानेगा, तो अपनी पर्याय को नहीं जानेगा क्या? ज्ञान की बात अलग है, दृष्टि की बात अलग है। हाल में आई बात? नहीं तो सर्वथापना का दोष तो, सर्वथा दृष्टि आप स्वीकार करो, ज्ञान को स्वीकार ही नहीं करो, तो वो भी कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ हम पेज नंबर 91 पर पढ़ रहे थे, तीसरी लाइन नहीं, ये तो हो गया था चैतन्य प्रभु नहीं सह गए, पहला एक पैराग्राफ पूरा हुआ था। हाँ सेकंड पैराग्राफ नया, आवी बात सांभी न हो अजी, हवे इन्हें सांभ्या विना समझाए के वी रीते, पहले सुनेगा तो समझेगा है ना, और समझेगा तो उस पर विचार करेगा। आ 84 ना अवतार मा रखड़वाणु, दुखी दुखी छेई, कीड़ा कागड़ा बून नरक ने नारकीना भव अनंता करया छे, अनंत अनंत भव करया छे। अभी मनुष्य हुआ तो मानता है मैं बहुत सुखी हूँ, और मैं जैसा सोचता हूँ वैसा कर दिखाता हूँ, ये उसको अभी अभिमान हो गया है, परंतु ये सारे भाव कर करके यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर भी दुखी दुखी है, क्योंकि ये मान्यता इटसेल्फ दुख है। आ भव पहला भव 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 अनंत अनंत कर्या, क्योंकि काल तो कहते अनादि का है, यानी कितना भी पीछे जाओ तो है ही है काल, तो हम भी है ना, हम एक द्रव्य है तो हमारा अस्तित्व है, तो आज अस्तित्व है तो भूतकाल में था कि नहीं था, तो था तो किसी न किसी भव में तो जन्म मरण करते आए हैं, क्योंकि अभी हम मनुष्य तरीके जन्मे हैं तो मुक्त तो हुए नहीं है, अभी तो मुक्त नहीं हुए हैं अभी तक, यानी अनादि से जन्म मरण ही करते आए हैं, अभी तक तो यही किया है, दूसरा कुछ नहीं किया, ये कह रहे क्योंकि ते अनंत अनंत भव कर्या। ए मिथ्यात्व ने लईने, निज द्रव्य नी दृष्टि छोड़ीने, परद्रव्य नो आश्रय लईने लाभ मान्यो, ए मिथ्या दृष्टि छे। देखो सबसे आसान तरीका सुखी होने का निज द्रव्य की दृष्टि, परंतु परद्रव्य का ही आश्रय लेकर उससे लाभ माना, ये मिथ्या दृष्टि है। एक कारण बस इतना ही कारण है, चार गतिमा अनंता भव करे छे रखड़े छे, पद्म प्रभु मलधारी देव कड़क छे, दृष्टांत केवू कहूं के ईंधन युक्त अग्नि वृद्धि पामे छे, एम आत्मा मा पोताना स्वभाव ने छोड़ीने परद्रव्यना विकल्प मा रोकाशे तो संसार सड़कशे, तने संसार उत्पन्न थशे, यानी संसार में वो नया नया और क्योंकि पर्याय है वो तो होती रहती होती रहती, जन्म मरण मा जवू पड़शे, आवु सांभळवा मळे नहीं, एक कैदी विचार करे, बधा करो व्रत करो तप करो उपवास करो आ करो बस ए करो करो ने करो, महाव्रत लई लो मुनिपनु लई लो नग्नपणी थई जाओ, पण समकित विना तारू नग्नपणु द्रव्यलिंग धारण छे, आत्मज्ञान विनानी बधी चीज मिथ्या भ्रांति छे, क्योंकि आत्मज्ञान से तो धर्म की शुरुआत होती है। 246 थयो अभी गाथा 146 वो श्लोक हुआ था 246 वाला। परचत्ता परभावम परिचत्ता परिचत्ता परभावम अप्पाणम जादि निम्मल सहावम अप्पवसो सो होदिहु तस्सदुकम्मम भणंती आवासम। परित्यक्त्वा है यहाँ पर, यहाँ परित्यज्य लिखा है, परिचत्ता परिचत्ता इन्हें परित्यक्त्वा उसका अर्थ किया है, यहाँ परित्यज्य लिखा है, अर्थ वही होता है परंतु परित्यक्त्वा ज के बदले त्वा क और त और वा परित्यक्त्वा ज के बदले परित्यक्त्वा। देखो देखो परित्यज्य लिखा है ना तो तीन अक्षर वैसे लिखना, परित्य इतना तो बराबर है, फिर आधा क आधा त और वा पूरा वा समझ में आई बात, परित्यक्त्वा को पहले क फिर त फिर वा त्यक्त्वा त्यक्त्वा परभावम आत्मानं ध्यायति निर्मल स्वभावम आत्मवशः स भवति खलु तस्य तु कर्म भनन्त्यावश्यम भनन्त्यावश्यम। उस कर्म को आवश्यक कहते हैं। पढ़ेंगे परिचत्ता परभावम अप्पाणं जादि निम्मल सहावम् अप्पवसो सो होदिहु तस्सदुकम् भणन्ति आवासम् परित्यक्त्वा परभावम् आत्मानं ध्यायति निर्मलस्वभावम् आत्मवशः स भवति खलु तस्य तु कर्म भणन्त्यावश्यम् पीछे पर भाव छोड़ी आत्मने जावे विशुद्ध स्वभावने छे आत्मवशते साधु आवश्यक कर्म छे ते हने। देखो पहले बताया था कि अन्य वश कौन है, अभी आत्मवशक साधु की बात कर रहे हैं। पहले वो द्रव्य लिंगी बताया, भगवान कहते हमारा भी लक्ष्य करेंगे तो भी तू अन्य वश है वगैरह वगैरह बात देखी थी। फिर द्रव्य गुण पर्याय वह है, वो भी अन्य वश है, अन्य वश है तो उसको आवश्यक नहीं है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे, पहले अन्वयार्थ पढ़ते हैं। परभावम परित्यज्य कहो या परित्यक्त्वा कहो, जे परभाव ने परित्यागी ने निर्मल स्वभावम निर्मल स्वभाव वाला आत्मानम आत्माने ध्यायति एने ध्यावे छे सह खलु ते खरेखर आत्मवश भवति आत्मवश छे तस्य तु अने तेने आवश्यम कर्म आवश्यक कर्म भणन्ति जिनो कहे छे। जिनेन्द्र भगवान उसको आवश्यक कर्म कहते हैं। अब इसी की टीका, अहीं खरेखर साक्षात स्ववश परम जिन योगीश्वर नु स्वरूप कहूं छे, जे श्रमण निरुपराग उपराग रहित निर उपराग निरुपराग निरंजन अंजन ने वो दोष निरंजन स्वभाव वालो होवाने लीधे औदयकादि परभावना समुदाय ने परित्यागी ने निज कारण परमात्मा ने स्वभाव भाव को यानी पर्याय का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव को उपाधि उपराग यानी वो सारा जिसको कहें ये जो सारी भाव है पर्याय में पर्याय वाले भाव हाँ विभाव सभी पूरे सम पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर उसको निरुपराग निरंजन ये स्वभाव के विशेषण है। स्वभाव कैसा है तो निरुपराग है और निरंजन है। इसलिए अन्य परभावों के समुदाय को छोड़कर उसको परभाव कहा, औदयिकादि परभाव परभाव है अपनी ही पर्याय है पर उसको परभाव कहा। क्या कहा? हाँ हाँ देखो औदयिक भाव किसको कहेंगे, यहाँ कर्म के उदय है और जीव के यहाँ अपने भाव है, कर्म के कारण नहीं है पर अपने स्वयं का मिथ्यात्व है राग द्वेष है असंयम है अज्ञान है असिद्धत्व है जिसे गति औदयिक भाव होते हैं, कषाय है क्रोध मान माया लोभ तीन वेद है और लेशा है ये सब क्या है औदयिक भाव कहलाते दे। आपने सुने हो ना औदयिक औपशमिक शौपशमिक शायिक ये जो पर्याय वाले भाव है और पारिणामिक वो स्वभाव भाव है। वो स्वभाव भाव कैसा है तो निरुपराग है निरंजन है। ऐसे होने से औतिकादि परभावना समुदाय ने परित्यागी ने उसका त्याग करने ने उसका लक्ष्य छोड़ दिया। निज कारण परमात्मा ने के जे कारण परमात्मा काया इंद्रिय ने वाणी ने अगोचर छे अगोचर ने उसके द्वारा जाना नहीं जाता इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जा सकता है नहीं काया के द्वारा जाना जाएगा और वाणी के द्वारा उसको समझ में आवे ऐसी भी बात नहीं है। सदा निरावरण हुआ थी हमने देखा ना स्वभाव में कभी आवरण नहीं होता। कल आपने पूछा था ना निरावरण की बात, आवरण वो तो पर्याय में है कब तक जब तक अभी सर्वज्ञ नहीं हुआ तब तक वो आवरण वाला ज्ञान दर्शन वो जो आवरण कहते उसको कल बात छद्मस्थ की पूछी थी आपको। तो सदा निरावरण हुआ थी निर्मल स्वभाव वालो छे अने समस्त दुरघ रूपी अघ इटसेल्फ पाप होता है और दुरघ ने वो दुष्ट पाप यानी पुण्य पाप दोनों को यहाँ दुरघ कहा। समस्त दुर्ग रूपी, नीचे देखो फुटनोट में, दुर्ग ने दुष्ट अघ यानि दुष्ट पाप, अशुभ तेम शुभ कर्म बनने दुर्ग छे। तो क्या कहते हैं, अने समस्त दुर्ग रूपी वीर शत्रुओं की सेना ना ध्वज ने लूटनारो छे। ये दुर्ग जो है, शुभ अशुभ कर्म जो है, भाव जो है, वो कैसे है, वीर है। क्यों? सबके ऊपर विजय प्राप्त करके बैठे हैं, सबको अपने वश करके बैठे हैं। तो ऐसे जो उसकी जो सेना है, उसके ध्वज ने लूटनारो छे, तेने ध्यावे छे। कौन है ऐसा लूटने वाला? निज कारण परमात्मा। यानी स्वभाव का लक्ष्य करने से ये शुभाशुभ भाव उत्पन्न नहीं होगे, तो उसकी सेना के ध्वज को लूटनारा छे, ऐसा साहित्यिक भाषा में, अलंकारिक भाषा में कहते हैं। तेनेज एटले ते श्रमण नेज, आत्मवश कहवामां आव्यो छे। इसका अर्थ क्या है? ये पर्याय का लक्ष्य छोड़कर राग से रहित अपना जो स्वभाव भाव है, उसमें जो एकाग्र होकर उसी में जो स्थित हो गए है, वह आत्मवश है। ते अभेद अनुपचार रत्नत्रयात्मक श्रवण ने, पहले कौन से वो द्रव्यलिंगी लिए थे, उनको तो व्यवहार भी नहीं कहा था, वो तो भेद उपचार ऐसे कहते, जो जिसको निश्चय है उसके जो व्यवहार रत्नत्रय होते हैं उसको भेद और उपचार कहते हैं। और ये निश्चय जो रत्नत्रय है स्वरूप में, जो उसकी दृष्टि, उसका अनुभव और उसी में स्थिरता, उसको क्या कहेंगे? अभेद अनुपचार और रत्नत्रय। तो अभेद अनुपचार रत्नत्रयात्मक श्रमण ने, श्रमण को ही रत्नत्रयात्मक कहा, क्योंकि उन्होंने वो रत्नत्रय रूप पर्याय प्रकट की है, तो श्रमण को ही रत्नत्रयात्मक कहा। उस श्रमण को समस्त माह्य क्रियाकांड आडंबरना विविध विकल्पोना महाकोलाहल थी। ये क्या है महाकोलाहल? कहा कौन से मुनियों के भी जो बाह्य क्रिया के विकल्प है उनके लिए उसको महाकोलाहल कहा। उससे प्रतिपक्ष वो क्या है? वो महाकोलाहल है। और यहाँ महा आनंदानंद प्रद, प्रद यानी देनारा, महा आनंदानंद प्रद नीचे लिखा है देखो, परम आवश्यक कर्म, निश्चय धर्म ध्यान तथा निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप छे, के जे ध्यानो महा आनंद आनंदना देनारा छे। आनंद आनंद प्रद, द लगाने से देनारे, पर ने विशेष देनारे, तो महा आनंद आनंदना देनारा छे। आ महा आनंद आनंद विकल्पोना महा कोलाहल थी विरुद्ध छे, यानी जो स्वरूप में स्थिरता पाते हैं वो तो महा आनंद में उसका अनुभव करते हैं, और जो बाह्य क्रियाकांड में रचे पचे हैं तो विकल्पों के कोलाहल से उतने दुखी है। तो कहते महा आनंदानंद प्रद यानी महा आनंदानंद देने वाले निश्चय धर्म ध्यान तथा निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप परम आवश्यक कर्म चे, किसको? मुनि को। कौन से मुनि को? कि जो उनका स्वभाव का वर्णन किया है और ऐसे स्वभाव को जो ध्याते हैं, यानी स्वभाव का ध्यान करते हैं, स्वभाव में जो एकाग्र होते हैं, उनकी बात यहाँ चल रही है। अब हम गाथा का प्रवचन पढ़ेंगे, पेज नंबर 93। अहीं खरेखर साक्षात स्ववश आत्माने वश परम जी ने योगीश्वर नु स्वरूप कह्यू छे। मुनि तो आत्माने वश थया छे। मुनिए पंच महाव्रत ने रागनी देहनी क्रिया मां नथी, क्या कहा? मुनिपना किसमें है? तो आत्मस्थिरता वही मुनिपना है। तो ये नग्नपना है ना, हाँ वो जड़ की अवस्था है। एक है यहाँ लिखा है देखो, नग्नपनु ये तो जड़नी क्रिया छे। पंच महाव्रत या आश्रव दुखनी क्रिया छे। देखो उसमें ये सब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आश्रव तत्व से अपने को जुदा अनुभव कर रहे कि नहीं कर रहे? सात तत्वों को जुदा जुदा यहाँ स्थान दिया है, तो जीव तत्व जो यहाँ वर्णन चल रहा है, निरुपराग निरंजन स्वभाव वाला वगैरह वगैरह, त्रिकाल निरावरण, वो उसका वर्णन है। तो कहते हैं नग्नपन ये तो जड़ की क्रिया। पंच महाव्रत है आश्रव, क्योंकि वो शुभ राग है, वो आश्रव है, दुख रूप भाव है। मुनि एमा रहता नहीं, मुनि किसमें रहते? मुनि तो आनंद में रहते हैं। आनंद में रहते कैसे जाने? तो स्वरूप में स्थिर है वे, तो ये तो बाह्य क्रिया हो रही ना। हाँ, परंतु वो आश्रव में नहीं है, पर्याय में राग है पंचमावृत का, वो उसमें नहीं रहते, उससे जुदा अपने का अनुभव चल रहा है। अहीं खरेखर साक्षात स्ववश परम जी नहीं होगी, साक्षात स्ववश ने अभी वो तो विकल्प से नहीं, सातवें गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थानों की बात है, जो अंतरंग में स्थिर है उनकी बात चल रही है यहाँ पर। इसलिए साक्षात स्ववश परम जिने योगीश्वर का, परम जिने योगीश्वर आत्मा, आत्मा मा लगावो, लगनी लगावी अंदर एकाग्र थऊ, अतीन्द्रिय वितरागता अने अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद एमा परम उत्कृष्टपणे लीनता थवी, उसको परम जिने योगीश्वर का ए मुनिपनो छे। बाकी तो बधा वेशधारी द्रव्यलिंगी छे, आहा ए श्रमण, श्रमण ने मुनिराज निरुपराग निरंजन स्वभाव वालो होवाने लीधे औदयिकादि प्रभावना समुदाय ने परित्यागी ने शू कहे छे, एथी वधारी लीधु जे मुनि पोतानो निरुपराग, निरुपराग ने राग रहित निरंजन स्वभाव वाला एवो प्रभु एवो होना होवाने कारणे औदयिकादि राग नो उदय भाव। देखो औदयिकादि में किस किस को लेना, हमने इसको याद किया था, ये चार भाव जो पर्याय रूप भाव होते हैं, तो राग नो उदय भाव यानी अभी मुनि है तो मिथ्या तो यहाँ नहीं लेना, हमने जो औदयिक भाव गिने थे तो टोटल गिने थे, कितने लेशा होते, कितने कषाय होते, क्या क्या होता है, कितने वेद होते हैं, वो सब औदयिक भाव 21 भाव होते हैं, तो उसमें से अभी मुनियों को कौन से है वो संज्वलन का राग बाकी है। तो कहते हैं राग नो उदय भाव उपशम भाव, अभी राग नो उपशम भाव नहीं लेना, राग नो तो उदय भाव, राग इटसेल्फ उदय भाव है, बाकी वहां औपशमिक भाव, क्षौपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्योंकि अभी ज्ञान है वो क्षौपशमिक रूप से है, वीर्य ने पांच जो है ना दान लाभ भोग उपभोग वो भी क्षौपशमिक भाव है, किसी को क्षौपशमिक सम्यक तो है बीच सातवें गुण स्थान में औपशमिक यानी अगर श्रेणी में है तो द्वितीय औपशम ले सकते हैं उसको, क्षायिक सम्यक तो ले सकते हैं। इस तरह से पर्याय वाले जो भाव है, पेज नंबर मिला आपको? देखो नया पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ उसका चौथी लाइन, औदयिकादि परभावों ने परभावों ना समुदाय ने वो ने के बदले ना करना, मिला क्या? पांचवी लाइन शुरुआत में परभावों ना समुदाय ने परभावों का समुदाय यानी पर्याय रूप भाव सब लेना, परित्यागी ने ये क्या आधा गया क्या? आगा घा चाहिए, धाने घो आगे ने दूर, वो ध है घ चाहिए, दूर गए पर द्रव्य नु लक्ष्य छोड़ी ने पछी द्रव्य नो भेद छोड़वो, क्या कहा? पर द्रव्य का लक्ष्य छोड़ना है तो अपने में आकर द्रव्य गुण पर्याय के भेद का विचार नहीं करना, उसका भी लक्ष्य छोड़ देना ये कह रहे। तारी पर्याय मा जे औदयिक भाव थाय छे, पर्याय है ना, पर्याय के भाव भी होंगे वहाँ, औदयिक आदि भाव है वहां पर, उदय उपशम क्षोपशम क्षायिक एने पण छोड़ीने त्रिकाली तत्वनी दृष्टि करवी, छोड़ने अभी पर्याय को कैसे छोड़ सकता है? बाकी तो छोड़ा, पैसा छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, हाँ मनीषा बेन ये पर्याय को कैसे छोड़ने बोलो,
स्वामी
देखो दृष्टि छोड़नी है उसकी, पर्याय को कोई छोड़ नहीं सकता, द्रव्य पर्याय बिना कभी त्रिकाल में नहीं होगा। हम उसका लक्ष्य छोड़ सकते हैं, अरे एक ही जगह है। अभी सोने की बंगड़ी है, सोने की बंगड़ी है, अभी बंगड़ी को जुदा करो और सोना का जुदा करो, करो करो करो, वो तो उसकी अवस्था उससे साथ रहेगी हमेशा, परंतु हमारे ऐसी ज्ञान की विशेषता है शुद्ध ज्ञान में, हम एक को गौण कर सकते हैं। हमने आपको पूछा आपके पास घर में कितना सोना है, तो अपने टोटल सोना कितना है वो देखा, वो बंगड़ी है कि हार है कि मीठी है, उसकी कोई उसको गौण कर दिया, कितना है, 2-4 किलो है क्या? आप एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो हमने पर्यायों को गौण किया है, उसको छोड़ा, छोड़ा का अर्थ क्या है, उसका लक्ष्य छोड़ा है, ख्याल में आई बात, बरोबर पकड़ना उसको। यहाँ क्या लिखा, एने पण छोड़ीने त्रिकाली तत्वनी दृष्टि करवी, एक समय में त्रिकाली नित्यानंद प्रभु सच्चिदानंद, सच्चिदानंद आत्मा ध्रुव बिराजे छे। यहां लिखा देखो, पर्याय नु लक्ष्य छोड़ी आई ने, त्रिकाली नु लक्ष्य करो, अने दृष्टि त्यां लगावे, यानी किसी भी पर्याय के पीछे पूरा त्रिकाली विद्यमान है कि नहीं है पहले ये नक्की करो। जो अनादि अनंत कायम रहने वाला भाव, वो पर्याय पर्याय एक समय की है, पर उस समय वो जो ध्रुव स्वभाव भाव पूरा का पूरा है कि नहीं वहां पर, कि वो भी एक समय वाला है, उसी समय में वो त्रिकाल रूप से विद्यमान है। गुरुदेव भाई बहुत हमेशा कहते थे एक समय में त्रिकाली है, प्रत्येक समय में त्रिकाली है वहां पर, यानी परिपूर्ण है, पर्याय कैसी भी क्यों ना हो वो त्रिकाली रूप से जो स्वभाव है तो हमेशा ही रहेगा वह। तो पर्याय नु लक्ष्य छोड़ी त्रिकाली नु लक्ष्य करवूं अने दृष्टि त्यां लगावी, उसी में मैंपना स्थापित करके उसी में एकाग्र हो जाना है। ए स्ववश प्राणी छे, स्वाधीन छे, अने तेने धर्म थाय छे, परने वश थाय छे तेने धर्म थतो नथी। परने वश का अर्थ राग आदि के वश हो जाता है, उसको धर्म नहीं होता है। नीचे नियम सार 146 गाथा एनी टीका, अहीं अभी वही हो गए ना, उसी को पर का वश कहा, परे ने भगवान आत्म पर का लक्ष्य करके भी भक्ति भक्ति में अच्छा रचा पचा है, उसको भी परवश ही कहा, परवश ने वो पर वस्तु को वश ऐसा नहीं कहा, परवश का अर्थ ही अभी वो राग आदि में रचा पचा है उसी को परवश कहा, भले वो भगवान की भक्ति कर रहा हो या द्रव्य गुण पर्याय के बारे में सोचता हो, वो परवश कहा यहाँ पर, क्यों वह विकल्प है और विकल्प है वही परवशता है। पर पदार्थ का क्या वश होगा, उससे तो छूटा ही है, ख्याल में आई ना बात। अहीं खरेखर साक्षात परवश, स्ववश चाहिए, परवश कैसे, बराबर कह रहे, स्ववश साक्षात परवश परमजिनेश्वर कैसे हो गए,
आप वो लाइन पढ़ रहे हो,
लाइन ही पढ़ रही मैं,
हाँ
हाँ
लाइन
वही लाइन आपको पढ़नी है,
हाँ अच्छा स्ववश करो,
लेकिन अंदर डिटेल में
पर निकाल को स्व करो, देखो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ठीक है, परम जीने योगीश्वर एटले स्ववशी होने चाहिए। देखो अहीं खरेखर साक्षात स्ववश परम जीने योगीश्वर नु स्वरूप कहूं छे, जे श्रमण निरुपराग निरंजन, अंदर तत्वनी वात छे ने, यानी स्वतत्व की बात, तत्व ने स्वतत्व बाहर थी तो कहीं करी शकतो नथी एक लुगड़ो पहेरवो के ओढ़वो के ए आत्मा करी शकतो नथी लुगड़ो ओढ़वो के पहेरवो ए के आम थाय ए जड़नी क्रिया आत्मा करी शकतो नथी
लुगड़ू पेरवु के ओढ़ जरा समझना
एने वस्त्र वस्त्र पहनना के वस्त्र छोड़ना वो सब सब उसमें आए ओढ़ना हाँ ओढ़ने का अर्थ पांगरने है ना लपेटना हाँ ओढ़ना उसको ओढ़ना कहते हैं ए जड़नी क्रिया आत्मा करी शकतो नथी तो आप पूछेंगे तो दिगंबर नग्न दिगंबर होने की कंडीशन क्यों आत्मा कर नहीं सकता तो आत्मा छोड़ तो सकता है ना छोड़ भी नहीं सकता पहले ये नक्की करना है हाँ देखो हवे एना थी पार हवे अहीं तो पाछी वात छे विकल्प छे पण आत्मानुं कर्तव्य नथी आवश्यक छे ने आवश्यक कर्तव्य छे एनु शू एने उसका आवश्यक कर्म क्या है उसको बता रहे जो स्ववश है विकल्प करना ये परवशवाद बताई निरुपराग निरंजन स्वभाव वालो होवाने लीधे जेमा जरिए राग नथी किसमें नहीं है राग स्वभाव में और कब नहीं था राग केवल ज्ञान होने पर राग निकल जाएगा है ना हाँ अनादि से स्वभाव में राग कभी था ही नहीं और अभी वर्तमान में है ही नहीं के जेमा जरिए राग नथी शुभ के अशुभ राग क्रिया तो नथी क्यों कहा मनीषा बेन जड़ की बहुत अच्छा क्रिया तो जड़ की है आत्मा का उसका तो कोई संबंध ही नहीं है उसमें तो अत्यंत अभाव होगा क्योंकि जड़ की क्रिया है शरीर की कहो जड़ की कहो और ये आत्मा दो भिन्न द्रव्य है तो दूसरे की यानी जड़ की क्रिया है क्या कहा क्रिया तो नथी आ हलवानी चालवानी कपड़ा पहरवानी ओढ़वानी ख्याल में बाहर के भी सभी जो सुबह से जो जो काम करते हैं ना वो सब याद करो और ये क्या कह रहे हैं आत्मा की नथी और हम तो उससे परेशान है ना कितना काम करना पड़ता है मनीषा बेन को सुबह से तो उसमें मेरी यानी आत्मा की ये एक भी क्रिया नहीं ऐसा समझना पहले उसमें यहाँ लिखा ना हलवानी चालवानी कपड़ा पहरवानी ओढ़वानी आ कपड़ू पहरे त्यारे रहे तेम रहतु हशे भारी बात भाई ए करी शकतो नथी कहे छे कपड़ा ने आम पाकू बांधवू तो रहे ए आत्मानी क्रिया ज नथी स्कूटर पर जा रहे ना वो तो चुन्नी से जा रहे बराबर कसकर उसको बांधते तो रहेगी ना इतने आत्मा का कार्य नहीं है जीनी बात देखो आत्मा तो चैतन्य है उसका कार्य तो जानन देखन है और बाकी ये जो देखो ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो यहाँ जहाँ आत्मा है वहीं पर शरीर की भी रचना है शरीर का कार्य शरीर में शरीर के कारण हो रहा है आत्मा का कार्य आत्मा में आत्मा के कारण हो रहा है एट अ टाइम इतने सारे कार्य हो रहे हैं और उसकी इतनी नजदीकता है तो ऐसा लगता है क्या लगता है कि ये शरीर ही मैं हूँ और ये कार्य मेरा है और ये जीव की मान्यता अनादि से चल रही है क्योंकि जब तक शरीर को मैं मानकर चल रहा है तो ये मेरी ही क्रिया है ऐसा मानकर ऐसा सोचकर ही सब कार्य करता है उसका कार्य उस समय भी क्या हो रहा था जानना ये भेद ज्ञान उसको नहीं होने के कारण शरीर की अवस्था भी रोग हुआ अरे मैं रोगी हो गया रोग का जो कुछ होना है वो हो जाएगा वो रोग के नाम से पहले वो मरा जाता है नहीं समझे क्योंकि वो अरे ये रोग से मैं मर न जाऊं ये डर उसको इतना भयंकर डर है उसको कि पहले भागता है डॉक्टर के पास कहीं इसमें मरण न हो जावे क्या पता किसी बीमारी है ना अब कुछ बोल रहे थे देखो क्या कहते हैं, यानी बाहर के परवस्तु की तो क्रिया, शरीर की, कपड़े की, अन्य किसी चीज की, ये तो जीव के है ही नहीं है। अहीं तो यहाँ किसकी बात चल रही है, रागनी क्रिया पण एनी नथी, क्योंकि राग में जो अटका है उसको तो परवश कहा है यहाँ पर, एनी नथी। क्यों? वो कायमी स्वभाव भाव त्रिकाली उसमें मैंपना स्थापित किया है, अब उसमें तो राग है ही नहीं है, पर पर्याय में है ना। हाँ, पर्याय में है, पर वो उसकी क्रिया नहीं। उसकी क्रिया कैसी होगी? आत्मा की क्रिया आत्मा जैसे होगी कि उसके विरुद्ध होगी? हम उसी क्रिया को आत्मा की क्रिया कहेंगे जो आत्मा जैसी है। तो आत्मा का स्वभाव कैसा है? ज्ञान और आनंदमय है। तो जो स्वभाव रूप पर्याय उत्पन्न होगी उसको आत्मा की कहेंगे। वो पहली बात आई थी आत्मा की क्रिया, तो कहते वो राग की क्रिया हो रही है, वो आत्मा की नहीं, ऐसा यह कहते। तो अहीं तो है नहीं। देखो आचार्य है, अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा से बात करते। वो जीव की ही पर्याय में होते तो उसको जीव का भी कहेंगे। ये कुनकुंदाचार्य ही प्रवचन सार में जब आत्मा राग रूप या क्रोध रूप परिणमता है, आत्मा को क्रोधी नहीं का क्रोध कहा, क्योंकि वो उसी का परिणमन है। और जिस समय जिस रूप से परिणमता है उस समय उस रूप हो जाता है, यानी पूरा वो उससे भिन्न नहीं है कि उसका क्रोध जुदा है और ये आत्मा जुदा बैठा है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वहां हमें ज्ञान कराया जाता है, और जब यहाँ हम राग को भिन्न करते थे ये दृष्टि अपेक्षा से, दृष्टि ने स्व किस में स्थापित किया? अभी हमने स्वभाव में, सात तत्वों में जीव तत्व मैं हूं, तो ये आश्रव तत्व कहाँ चला गया? पर में चला गया, राग को पर में भेज दिया। तो इसको कहेंगे अपेक्षावश जहां जो कथन है उसको बराबर समझना हमारी ड्यूटी है। आप कहेंगे एक तो कुछ कहो ना, एक क्षण में ऐसा कहते, क्षण में घड़ी में वैसा कहते, कुछ तो एक बात कहो, तो ये आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि अपेक्षा से जुदे जुदे कथन आते हैं। तो देखो अभी हम यहाँ क्या कह रहे, अहीं तो, ये सर्वथा नहीं कहा, ये अहीं तो रागनी क्रिया पण एनी नथी, जरी राग था, क्योंकि मुनियों की बात चल रही थी, जरी राग था, कौन सा? वो संज्वलन वाला, ए क्रिया एनी नथी, निरुपराग जेमा रागज नथी। देखो पर्याय में राग है, परंतु स्वभाव जिसको मैंपने स्वीकार किया वो निरुपराग है, वो राग रहित है। निरूप राग, देखो निरुपराग इतले जेमा रागज नथी, सेकंड लाइन, भगवान चैतन्य ध्रुव नित्यानंद प्रभु, जेनी दृष्टिमा राग विनानी निरुपराग चीज दृष्टिमा पड़ी, एनी आवाज चले छे। एनी मुनिराज है जिनकी दृष्टि सम्यक हो गई, तो दृष्टि किस में पड़ी, किसके ऊपर गई? तो निरुपराग जो चीज है दृष्टिमा पड़ी, उसको दृष्टि में लिया। तो कहते उनकी बात चले, ऐसे श्रमण ने ऐसे मुनिराजों की बात है जो स्ववश है, क्योंकि उन्होंने स्वरूप का अनुभव करके स्वभाव में स्थिरता की है। बाकी बधा परवश छे, क्यों? वो राग में अटके हुए है, वो सब परवश है। निरुपराग निरंजन जेमा अंजन काई नथी, मेल नथी, भगवान आत्मतत्व निर्मलानंद प्रभु जेमा राग नथी मेल नथी, यानी राग इटसेल्फ मेल है। निरंजन स्वभाव वालो होवाने लीधे ये तो मलिन ने मेल ने राग ना अभाव वालो होवाने लीधे, यानी मलिनता विना का है, राग का अभाव वाला है। कौन? स्वभाव। औदयकादि प्रभावना समुदाय ने परित्यागी ने, बाहरनी क्रिया शरीरनी अने कपड़ानी अने लुगड़ानी पीवानी ने रांधवानी ने खावानी ए बधी क्रिया तो जड़नी छे। मनीषा बेन क्या कहा? हाँ हाँ, सब क्रिया बाकी पर वस्तु ये तो जड़ की है, पन अहीं तो कहे छे के प्रभु छे एना चार भाव एमां नथी। ये कौन से चार भाव? सपना अभी हमने पढ़े थे थोड़ी देर पहले, जिसको हमने कहा था पर्याय रूप भाव, आपको याद है रक्षाबेन? हाँ, औदयिक भाव, अच्छा औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, औपशमिक भाव, ये कैसे पर्याय वाले, पर्याय की बात है। पारिणामिक, पारिणामिक कहा था आपने, औदयिक छोड़ के, छोड़ के बोला। हाँ मुझे लगा आपने औदयिक का नाम लिया पहले। हाँ औदयिक आदि को छोड़ा यानी सबको छोड़ा, सबको छोड़ा यानी औदयिक बिना के ऐसा नहीं छोड़ा यानी उसका लक्ष्य छोड़ा। भावों को छोड़ा का अर्थ क्या है, अभिक्षायिक सम्यक तो है उसको क्या छोड़ेगा, तो छोड़ना क्या है, उसका लक्ष्य छोड़ना है। क्योंकि क्षायिक सम्यक तो ये पर्याय है और मैं जो अनादि में कब से हूँ, अनादि अनंत कायम हूँ, ख्याल में आते हैं। पहले नहीं था क्षायिक सम्यक, तो अभी हुआ है, तो उसका लक्ष्य करने से मेरी पर्याय निर्मल नहीं होने वाली। निर्मल कैसे होगी, स्वभाव के लक्ष्य से और निर्मलता की ओर चला जाएगा, पूर्ण वितराग होने वाला है। इसलिए ये जो पर्याय वाले चार भाव है, कौन से, औपशमिक है, चौपशमिक है, क्षायिक है, औदयिक है, इसका लक्ष्य छोड़कर। औदयिक आदि आप कौन से पेज नंबर भर दे, देखो 93 पर। हाँ तीसरी लाइन, औदयिक आदि कहा, औदयिक नहीं कहा, अकेला औदयिक नहीं कहा। हाँ हाँ देखो देखो उसमें बताए ना, उदय भाव में राग, राग रूप है वो उदय भाव लिया, फिर रूपसम भाव, क्षोपसम भाव, क्षायिक भाव, उसमें वो राग का ऐसा नहीं समझना, राग का शब्द, राग नो ये शब्द केवल औदयिक के लिए लगाना, राग इटसेल्फ औदयिक भाव है, बराबर है। उपशम भाव में क्या है, वो तो दर्शन मुनि का, चरित्र मुनि का उपशम होता है उसकी बात है। क्षोपसम भाव में ज्ञान का और ये अंतराय वगैरह उस दान लाभ हो, उसके तो क्षोपशमिक भाव, क्षोपशमिक सम्यक तो भी हो सकता है, और क्षायिक भाव, क्षायिक सम्यक तो किसी के होगा ही नहीं, मुनि राजों की बात है, अभी केवली की तो बात नहीं है क्योंकि क्षायिक ज्ञान वगैरह तो हुआ नहीं अभी, तो क्षायिक सम्यक तो हो सकता है यहाँ पर, उसकी बात लेना है। देखो दृष्टि यानी उसमें मैंपना स्थापित करना है और उसका लक्ष्य करना है, ज्ञान उसमें केंद्रित करना है, उसी को जिसको हम ध्यान कहेंगे, उसी को जानते रहना है। दृष्टि यानी अभी उसको स्वीकार किया, अभी हमने पर्याय को गौण कर दिया, अभी अभेद में ध्रुव स्वभाव भाव, वो उसका जल्प नहीं है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, वो बात नहीं, बस नहीं नहीं नहीं, ये दृष्टि का अर्थ क्या होता है, दृष्टि, दृष्टि का विषय एक ही होता है स्वभाव भाव, जिसको हमने स्व कहा, स्व उसी में स्थापित किया, तो पर्याय को, पर्याय को और उसका लक्ष्य करके उसमें स्थिर होना, उसका ध्यान करना, वो लक्ष्य में चला जाएगा। अभी पर्याय दृष्टि किसको कहेंगे, पर्याय जितना मैं हूं ऐसी मान्यता, उसको कहेंगे पर्याय दृष्टि। पर जो स्वभाव की दृष्टि है जिसको, यानी जिसको सम्यक दर्शन हुआ है, उसको पर्याय का ज्ञान होगा कि नहीं होगा, समझ में, अपने में क्या राग उठ रहे उसका ज्ञान होगा कि नहीं होगा, परद्रव्य का भी ज्ञान होगा कि नहीं होगा उसको, तो ज्ञान अलग बात है, लक्ष्य वहां जाना यानी उपयोग वहां जाना, उपयोग वहां केंद्रित करना, उपयोग बात अलग है, वो ज्ञान की पर्याय है, और दृष्टि ये दर्शन की पर्याय है। दृष्टि में पर स्व पर कुछ नहीं, बस बस ना, जो स्व है उसी को उसका विषय है, ये स्व है ये पर है ये ज्ञान जानेगा, ज्ञान ने सब दिखा दिया उसको और उसको दृष्टि ने स्वीकार किया, बस ये मैं हूँ इतना ही, ये मैं हूँ और ये पर है ऐसा भी उसका नहीं है, बस वो तो उपयोग है ना। हाँ पेज नंबर 94 पर थे ना, सेकंड पैराग्राफ, हाँ फर्स्ट पैराग्राफ हुआ ना, नया चालू होता है वहां से लेना है ना, समुदाय ने परित्यागी ने, बराबर, रांधवा ने खावा नहीं, ये हमने मनीषा को पूछ रहे थे, है ना, पर नहीं तो कहे छे प्रभु छे ना चार भाव एमा नथी, क्या कहा, यही पढ़ना है ना, किसके भाव है वो? एना चार भाव एमा नथी। क्या कहा? पहले एना चार भाव कहा, एना चार भाव ने उसके पर्याय में है बत बताए, एमा नथी। उसी के भाव उसी में नहीं है, ऐसा कहें यानी उसके पर्याय वाले भाव ये स्वभाव में नहीं है, ऐसा है। देखो पेपर में आता है ना, अमुक 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 हमारा लड़का, आज से हमारा नहीं है। अरे पहले कहते हमारा है और वक्ते आज से हमारा नहीं, क्यों? उसके साथ जो कोई पैसे के लेन देन करेंगे हमें उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ऐसे कोई निकालते ना पेपर में, ऐसा लिख देते हैं। ऐसे भी होते कोई बेटे जो कोई अनाप शनाप जो कुछ रुपया पैसा ऐसा बर्बाद करते होंगे, तो बाप ऐसे जाहिर करते कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं, कोई इसके लिए व्यवहार करेगा तो वो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये पहले क्या लिख रहे, हमारा बेटा, और बाद में क्या लिखेंगे, आज से हमारा नहीं है। ऐसे ये क्या कहते, एना चार भाव एमा नथी, ख्याल में आई ना? यानी वो तो औदयकादि चार भाव है पर्याय में, पर वो उसके नहीं है। पर्याय मा एना भाव है ना, उसके पर्याय में है। उदय भाव, उपशम भाव, क्षोभम भाव, क्षायिक भाव, चार पर्याय जे छे एना मानती, एना मानती यानी स्वभाव में नहीं। क्या जीव ने पहुंचू, अभी कभी सुना नहीं है, उसका अर्थ समझ में नहीं आता, तो वो कब उसका करेगा, वो प्रकट कब करेगा धर्म? निरुपराग निरंजन स्वभाव वालों होवाने लीधे औदयिकादि पर भावना, ये सभी चारों भावों को पर्याय इटसेल्फ को परभाव कह दिया है। ए परभाव छे स्वरूप प्रत्यक्ष स्वभावे प्रत्यक्ष, ए सिवायना चार भावे परभाव छे। अगर हमारे बिल्कुल सात तत्व की भाषा में आप जो संडे को सीख रहे हैं, तो जीव तत्व मैं, निज तत्व मैं हूं, और बाकी सारे जो आश्रय बंध रूप वो तो है ही, औदयिक वगैरह भाव वो तो प्रभाव है ही है, संवर निर्जरा मोक्ष रूप भाव भी उसको प्रभाव में चले जाएंगे। ख्याल में है ना बात? केम के पर्याय छे ए त्रिकाली चीज नथी, क्षणिक है ना, वो पहले नहीं थे अब हुए है, या औदयिक भाव आप कहेंगे अनादि से है, अनादि से वही का वही नहीं है, अन्य 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 होते, कभी क्रोध कभी मान कभी माया, इसे होते रहते हैं। ये कल ही पढ़ना पड़ेगा, नया पैराग्राफ बड़ा है ना, एक पैराग्राफ हो गया हमारा, सेकंड पैराग्राफ से शुरू करेंगे बीच वाले कल। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो हो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। अरविंद।